ध्यान से सुनना है, खास बात है। तो ये जो सूरज है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। हम यहाँ बैठे हैं तो सूरज हमको थाली जैसा दिखता है, क्योंकि दूरी है। कितनी दूरी है कि सूरज की किरण चलती है तो 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की गति से सूरज की किरण दौड़ती है, 8 मिनट में पहुँचती है। तो गणित लग सकता है कितने करोड़ माइल दूर है सूरज। अगर हम सूरज पर खड़े होकर पृथ्वी देखें तो एक बिंदी दिखेगी, ठीक है ना, 13 लाखवां हिस्सा। पृथ्वी है सूरज का 13 लाखवां हिस्सा, वो 13 लाख गुना बड़ा है विज्ञानियों की रिसर्च के अनुसार। और आकाशगंगा के जो 400 करोड़ सूरज है उसमें से सबसे छोटा है। समय की धारा में ये एक सूरज है, फिर दूसरा आता है नीचे, तो सब उखलने लगता है। आदमी तो चल मेरे भैया, जीव जाति चल, ऐसे 11 सूरज तपते हैं, सब अग्नि अग्नि हो जाता है। तो उसको बोलते हैं अत्यंतिक प्रलय। तो उसमें सारे पृथ्वी लोग तो समझो खाक हो गया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग रहते हैं। जब महाप्रलय होता है तो ये आकाश गंगा ब्रह्मा विष्णु महेश सब चट, फिर भी हम लोग रहते हैं। महाप्रलय होता है कुछ भी नहीं रहता, उसको जानने वाला है तभी तो ये ज्ञान मिला हमको, क्या ख्याल है? महाप्रलय में ब्रह्मा विष्णु महेश और ये आकाश गंगा और ये सूरज, ये सब चट हो जाते, कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं रहता उसको जानने वाला कौन है? वो अभी भी है। दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, बचपन आया चला गया, कुछ नहीं रहा, फिर भी आप तो है ना। मर गए, शव को देखा, कुटुंबी रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, आप आकाश में खड़े देख रहे, तो मरने वाले शरीर की मृत्यु हुई, आपकी नहीं हुई। आप वो चीज है। ये गुरु की कुंजी के बिना पट नहीं खुलते। 60,000 वर्ष तपस्या किया, ये पट नहीं खुले। और परीक्षित राजा 7 दिन में सुखदेव जी की कृपा पाके ही पट खोल के साक्षात्कार कर लिया। इसीलिए बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गर्मियों में हिमालय की एकांत पसंद करता हूँ। तो ऋषिकेश में गंगा पार गीता भवन है, जानते हैं आप तो, काली कमली वालों का है गीता भवन। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार और जयदयाल गोविंद का, जानते ना नाम, तो जयदयाल गोविंद का जिसमें एकांत में रहते थे रमण, ये अपना महेश योगी के पहाड़ों के पास में कुटिया थे। मैंने उनको कहा मेरे को एकांत में कुटिया, तो उन्होंने वहाँ व्यवस्था की, मेरे को ठीक लगा। फिर सेठ जी की बेटी ने सीधा सामान भेजा राम सुखदास जी के कहने से, मतलब हनुमान प्रसाद फौजदार और सेठ जी, ये दोनों राम सुखदास, तीनों की गीता प्रेस गोरखपुर में और गीता कुटीर में, तीनों की सेवा सराहनीय है। तो सीधा लेके आया आदमी गीता कुटीर से और गीता भवन से आटा दाल चावल घी ये वो दही। मैं कहा भाई हम ये नहीं चाहिए, हमारे पास है, फिर भी भेजा है तो अपमान ना हो ऐसा समझ के मन में मैं क्या, ये सेठ जी की बेटी ने दही जमाया ये हम ले लेते, बाकी चीज़ें मैंने वापस कर दिया। ओ राम सुखदास जी ने बोला आपने सब सामान वापस कर दिया। मैं क्या महाराज जी दही रखा हमने। बोले वो सीधा भेजा था क्यों नहीं लिया। मैं क्या सीधा तो हमारे पास है और वैसे भी तीर्थों में दान का माल नहीं लेना चाहिए, उनको तो इतना नहीं बोला, सीधा तो हमारे पास है। तो राम सुखदास जी हंसे, बोले आपके पास नहीं है इसलिए थोड़ी भेजा था, नहीं है वाले तो भीख मांगे बहुत बैठे। नहीं है वाले हमारे पास नहीं है, दो दो तो बहुत मांग रहे, उनको नहीं भेजा था, आपको भेजा कि हमारा लग जाए। इतनी ऊंची नजरिया है, बड़े संत थे। अपने आश्रम में भी आए थे राम सुखदास जी, और मैं भी जब हरिद्वार आता तो ऋषिकेश उनके पास आता जाता था। बड़े नम्र बड़े सज्जन थे। तो उन्होंने अपना विल बना दिया था कि अगर मेरा शरीर कहीं गंगा किनारे नहीं छूटता और कहीं भी शरीर मेरा शांत हो जाए तो मेरी चिता वहीं लगाना जहां गायों का आना जाना होता है, गऊ धूली हो वहां अग्नि संस्कार करने से सदगति सुनिश्चित, तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार करने से दुर्गति से रक्षा, तुलसी की माला गले में हो अकाल मृत्यु नहीं, और तुलसी की माला हो और उस माला सहित अग्नि संस्कार हो जाए दुर्गति से रक्षा। इस माला का भी बड़ा महत्व है, जिस माला पे जप करते हो और तुलसी की है तो जो भी सत्कर्म करोगे 1000 गुना फल हो जाएगा। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसी योग्यता मनुष्य में है, मनुष्य भगवान का बाप बन सकता है, भगवान का गुरु बन सकता है, ऐसी योग्यता छुपी है। वसुदेव दशरथ भगवान के बाप बने कि नहीं बने, भाई बाप बने, वसुदेव देव की नंद यशोदा दशरथ कौशल्या अत्री अनुष्या और भी कई, तो ऐसी सारी योग्यता वाला मनुष्य पान मसाला खाए, झूठ कपट करे, हमको सजाए, मैं करोड़पति, मैं फलाना, अरे मैं को तो बस मैं के मूल में जा तो ईश्वर मिलेंगे, और मैं में उलझा तो मुसीबत मिलेगी, तरंग के मूल में जा तो समुद्र मिलेगा, तरंग को मैं माना और बुलबुले को मैं माना तो मुसीबत है। मेरे को 60 साल की उम्र में चश्मा आ गया था, फिर नेत्र बिंदु है वो डाला, चश्मा चला गया, अब 72 साल 74 साल का बापू बिना चश्मे और बेटे चश्मे वाले, शर्म की बात है। ये नेत्र बिंदु डालते हैं, और दूसरा मैंने खाया था त्रिफला रसायन, 40 दिन 2 बार किया था, 40 दिन में ही फायदा हो गया था, 80 दिन का कोर्स कर दिया मैंने, अब बिना चश्मे के सब पढ़ लेता हूँ, अखबार ये वो छोटे मोटे अक्षर। 74 साल की उम्र है, चश्मा छोड़ दिया, अब तुम चश्मा लगाते हो, शर्म आनी चाहिए। नारद जी ऐसा मैना मारते के सामने वाला चल पड़ता। जिस भीम से तुम्हारा ये था उस भीम की रोटियां खा रहे हो धृतराष्ट्र, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। धृतराष्ट्र को वैराग्य हो गया और रातों रात भाग के आ गए सप्त सरोवर में। मैना मारने से भी किसी को मुक्ति होती है, सदगति होती है, चश्मा छूटता है तुम्हें तो मैना भी मार दूंगा क्या है। 74 साल के बापू का चश्मा हट गया और तुम चश्मा पहनते हो, शर्म आनी चाहिए। सुन लेना। सुन लेना डांट अच्छी तरह से, ऐसा नहीं कि फ्रूट का टोकरा ले आए बस, वाह साहब वाह साहब वाह साहब, इधर नहीं होता, इधर कोई माल ले आए उसकी खुशामत नहीं होती है, डांट पड़ती है, डांट पड़ती है। चश्मा पहनते शर्म आनी चाहिए, 74 साल के बापू को चश्मा नहीं और बेटे चश्मा पहने और पढ़े, शर्म आनी चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। किसी को भी सिर दर्द हो तो सुबह मंजन करते समय ये ब्रश ब्रश करते हैं, अब पेस्ट वेस्ट लेते हैं आयुर्वेदिक को तो ठीक है, नहीं तो हड्डियों का पाउडर पड़ता है जानवरों की हड्डियों का, ऐसा मैंने सुना है, तो आयुर्वेदिक पेस्ट ले तो ठीक है, नहीं तो फिर मंजन, तो मैं तो मंजन अथवा तो एक तेल है आयुर्वेदिक, वो 10-5 बूंदे लेके उसी से कर लेता हूँ मंजन। फिर क्या करना चाहिए कि एक कुल्ला मुंह में पानी भर लिया और कटोरी में पानी लिया ठंडा, आंखें उसमें टपटपाई, आधा मिनट ये आधा मिनट वो आधा मिनट ये आधा, 2-3 मिनट दोनों आंखों को डुबाया, फिर वो चंबू भर के या टप भर के सिर पर धार कर दी। कुछ लोग स्नान करते तो गलती करते हैं कि पहले पैरों में पानी डालते हैं, और गंगा जी में जाएंगे तो पहले पैर ठंडे होते हैं, तो पैर और ठंडे होते हैं तो पैर की गर्मी सिर पे चढ़ती है। एक तो सिर पे गर्मी चढ़ने के कारण सिर दर्द होता है, दूसरा मोबाइल का उपयोग करने से भी सिर दर्द होता है। मोबाइल के उपयोग से भी बचना चाहिए, नहीं तो आगे चल के मोबाइल का सिर दर्द बहुत गंदा होता है। तो अब क्या करना चाहिए? मोबाइल के सिर दर्द को टक्कर मारने वाला राग पहाड़ी मैंने खोजा और शुरू करवा दिया। राग पहाड़ी, राग वसंती, राग सहानी। तो मोबाइल से होने वाले जो भी तकलीफें हैं, शुक्राणुओं की कमी, अनिद्रा, कान का दर्द, थकान, गहरी नींद का अभाव, आगे चल के 10-5 साल जो मोबाइल का उपयोग करता है फिर ऐसी बीमारियां पकड़ लेती है, तो उसका तोड़ है राग वसंती, राग सहानी, राग पहाड़ी, वो कराते रहते हम। अब क्या है कि सिर दर्द किसी भी प्रकार का हो, चाहे मोबाइल से हो, चाहे पित्त से हो, किसी से, तो सुबह क्या करना चाहिए? एक चंबू पानी का अपने सिर पर धार कर दे तो सिर की गर्मी पैरों से निकल जाए। राम सुखदास जी को भी सिर की गर्मी की तकलीफ आखिरी दिनों में थी और बहुत 108 वनस्पतियों का रस निकलवा के फिर लगाते थे, फिर भी जवानी में जो चढ़ गई गर्मी उसको उतारने में बहुत समय लगता है। तो आज ये ताजा खबर है बुलेटिन, सुबह सुबह मंजन करते समय एक चंबू पानी, ठंडे पानी से सिर को जरा ठंडा कर दिया तो सिर की गर्मी पैरों तले निकल जाती। सिद्धांत है पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा, आए डॉक्टर तो दिखा दो डंडा। पैर गर्म पक्का कर लो, पेट नरम, पेट मुलायम होना चाहिए, सिर ठंडा, आए डॉक्टर तो दिखा दो डंडा, बोले तुम ऐसे हो हवा खाओ। डॉक्टर को चेकअप कराओगे तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ निकलेगा, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है अथवा शुगर है अथवा फलाना है अथवा ढींगा, कभी भी किसी भी लेबोरेटरी में आप ब्लड टेस्ट करने को भेजो, कुछ न कुछ 19-20 दिखा देंगे। ऐसे ही ज्योतिषी के पास जाओ तो कभी कोई ग्रह, कभी कोई ग्रह, कभी कोई ग्रह गड़बड़ दिखेगा ही। अथवा तो ये नंग वाले के पास जाओ तो आपको तो शुक्र है, ये नंग पहनना चाहिए, आपको पन्ना पहनना चाहिए। अरे चैतन्य मनुष्य है, पत्थरों से क्या मदद लेना चाहता है, जड़ चीजों से क्या मदद लेना चाहता है? फलाना पीर है, ढींगणा पीर है, खोदा तो गधा मिला, बोले बड़ा पीर है, लेकिन खुदवाया तो गधे की लाश मिली। नसरुद्दीन का गधा मर गया था, फिर बड़ा पीर करके चल पड़ा धंधा, बड़ी इमारत बनी थी। मैंने विस्तार से कही है। तो आप खुद चैतन्य हो, मुर्दों से भीख मांग मांग के कब तक, भविष्य की कल्पना में कब तक, भूतकाल की कल्पनाओं में कब तक, वर्तमान में जीने, जीवन जीने की कला जान लो। तुमको भगवान भी नहीं मार सकते और शरीर को तो भगवान भी नहीं रखते, शरीर तो पंचभौतिक है, बदलेगा, उसके नियम जान लो, उसको स्वस्थ रखो और तुम मर जाओगे ये भय को निकाल दो, मरने के बाद भी तुम रहते हो तो तुम अमर आत्मा हो, चैतन्य हो। तो इस प्रकार का चिंतन भी तुम्हारी बीमारियों को और दुखों को भगाने में मदद करेगा। जरा सा बीमारी हुई, जरा सा समस्या आई नेगेटिव चिंतन में, हार्ट अटैक हो गया, चल पड़े, कोई जरूरत ही नहीं है भय की। भय चिंता मनुष्य को खा बैठी है। मैं सच बोलता हूँ, भगवान से पूछ लेना, भगवान भी आपको मिटा नहीं सकते, मार नहीं सकते, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। महाकाश घड़े को तो तोड़ सकता है लेकिन घड़े के आकाश को महाकाश नहीं मिटा सकता है। समुद्र तरंग को तो तोड़ सकता है लेकिन समुद्र पानी को नहीं मिटा सकता है। ऐसे ही देवता या भगवान या कोई भी व्यक्ति आपके शरीर को जो मिटने वाला है उसको मिटा सकते हैं, आपको कोई मिटा नहीं सकता।